देव और अरुणिमा इस वक्त टेरेस पर थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, या यूं कह लो कि एक दूसरे के साथ बातें करके अपनी कुछ पुरानी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शिकायत थीं, कुछ सवाल थे, कुछ बातें थीं जो शायद अभी भी दिल के किसी कोने में पनप रही थीं, जिसे वो एक दूसरे के साथ बात करके पूरा कर रहे थे। और ये खोना ज़रूरी भी था, क्योंकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं और वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन दोनों का अपना कोई भविष्य नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को भूलकर वो एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करें। देव और अरुणिमा अपनी किसी बात पर हंस रहे थे, तभी देव ने कहा, तुम बार बार मुझे अपने हस्बैंड का नाम बताने से कतरा रही हो, कहीं तुम्हारे हस्बैंड का नाम कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे सुनकर मैं हैरान हो जाऊं? अरुणिमा ने तुरंत कहा, हैरान हो जाऊं मतलब? मैं समझी नहीं। तो देव हंसते हुए कहा, अरे कहीं तुम्हारे हस्बैंड का नाम चमनलाल या फिर मोतीराम तो नहीं है? अरुणिमा के जहन में एकदम से आस्तिक का चेहरा आ जाता है और उसके साथ वो देखती है कि जब आस्तिक एक पावरफुल इंसान के रूप में खड़ा हो और सबको अपनी दमदार स्पीच से हैरान कर दे रहा था, तब उसने अपना नाम चमनलाल लिया था। और ये सोचकर ही अरुणिमा को हंसी आ जाती है। कितना अजीब होता आस्तिक रायचंद, नहीं चमनलाल माफिया लीडर। अरुणिमा को ऐसे हंसना देख देव को भी अच्छा लग रहा था। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, थैंक यू अरुणिमा। अरुणिमा उसे तुरंत हैरानी से देखने लगती है। तो देव ने कहा, अगर तुम मेरे सामने नहीं होती और मुझसे बातें नहीं करती तो शायद मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें गलत समझता। अरुणिमा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, तुम गलत नहीं होते, गलती मेरी थी, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थीं जिसकी वजह से मैंने उस वक्त तुम्हारा दिल दुखाया था। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो और मेरे पास भी अपनी परेशानियाँ हैं। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में होने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और एक दूसरे के साथ अच्छी यादें बनाकर रखें। क्या इतना हमारे रिश्ते के लिए काफ़ी नहीं है? देव ने सिर हिलाते हुए अरुणिमा के सवाल का जवाब दिया, लेकिन तभी अरुणिमा ने तुरंत कहा, वैसे देव सवाल तो एक मेरे पास भी है। देव तुरंत उसकी तरफ देखता है तो अरुणिमा ने उसे डांटना भारी अंदाज में कहा, जब दो बच्चे थे तो ये तीसरे की क्या ज़रूरत थी? शौर्य और अरुणिमा काफ़ी नहीं थे क्या तुम्हारे लिए? देव के चेहरे पर एक शर्मिंदगी के भाव आ गए थे और उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से कहा, अरुणिमा ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल शौर्य और अरुणिमा ये मैं और मीरा ने प्लान नहीं किया था, वो दोनों तो बस समझ लो कि ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दे दिया था। जब मैं शौर्य को पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया की खुशियां मेरे सामने आ गई हैं और अपने बेटे को अपने सामने देखकर मेरा मन एकदम से भर गया था। बस उसी पल उसी दिन और इस समय मैं एक पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। और जब अरुणिमा मेरे सामने आई तो मुझे एकदम से तुम्हारा ख्याल आया, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम अरुणिमा रखा था। लेकिन इस नाम को रखने में अकेले मेरे हाथ नहीं है, बल्कि ये नाम मीरा ने भी पसंद किया था। शौर्य और अरुणिमा का नाम कैसे सिलेक्ट हुआ था? जब शौर्य का नाम की पर्ची बनाई गई तो ये नाम हमें एक मिनट में पसंद आ गया था, लेकिन अरुणिमा का नाम मीरा ने करीब 10 पर्चियां बनाई थी और मैंने भी करीब 10 पर्चियां बनाई थी। और तुम्हें पता है उन सब में हम दोनों ने क्या नाम लिखा था? अरुणिमा, क्योंकि हम दोनों ही चाहते थे कि तुम्हारी याद सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहे और जब भी हम अपनी अरुणिमा को पुकारें हमें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ वो अपनी दुनिया में इतने संघर्ष कर रही थी और वहाँ कोई और परिवार उसके नाम के सहारे ही अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा था। उसने तुरंत अपने जज्बातों को रोकते हुए कहा, थैंक यू देव, मुझे अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए। अब तक उन दोनों के हॉट चॉकलेट खत्म हो चुके थे। अरुणिमा ने देव के हाथों से कप लेते हुए कहा, तुम मीरा के पास जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकूंगी, बाहर का मौसम मुझे बहुत सुकून दे रहा है। देव ने सिर हिलाया और वहां से अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि मीरा सच में नींद में उसे ढूंढने लगती है। देव के जाने के साथ ही अरुणिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने अपने भारी मन से देव को जाते हुए देखा और अपने मन में कहा, आई एम सॉरी देव, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैं किसी की जिंदगी में जाकर उसके परिवार को खराब नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम और मीरा हमेशा मेरे दोस्त रहोगे और मुझे हमेशा अपने पास बिना किसी सवाल के रखोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार में रहकर मैं जहाँ पर किसी भी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पता है अगर मैं यहाँ ज्यादा समय रही तो आस्तिक मुझे आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा किसी ऐसी जगह जहाँ वो मुझ तक पहुँच ही ना पाए। अरुणिमा धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आती है। नीचे सब जगह अंधेरा था, बस इमरजेंसी लाइट कुछ देखने में मदद कर रही थी। उसने एक नज़र देव और मीरा के कमरे को देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी और उसके तुरंत बाद उसने बच्चों के कमरे की तरफ देखा। वो बच्चे बहुत प्यारे थे, कुछ ही समय में दिल के बहुत करीब आ गए थे, या यूं कहने की अरुणिमा अपने बच्चों की याद दिला गए थे। लेकिन अरुणिमा ने तय कर लिया था वो इस परिवार में रहकर खुद के साथ साथ इन्हें भी खतरे में नहीं डाल सकती है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना था। वो पहले कोशिश कर चुकी थी लेकिन मीरा और देव ने उसे जाने ही नहीं दिया, इसीलिए वो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलने का फैसला करती है। अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर पहला कदम सामने रखा वो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि आस्तिक ठीक उसके सामने खड़ा था। आस्तिक को अपने सामने देखकर अरुणिमा एकदम सदमे में चली गई थी। वो अपनी पलकें बार बार झटका रही थी, जैसे कि यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि आस्तिक सच में यही है। लेकिन आस्तिक का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। उसने अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही उसने खींचना शुरू किया, अरुणिमा होश में आती है और उसे एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रही है, सच में आस्तिक उसके सामने खड़ा है। उसने तेजी से अपना हाथ आस्तिक के हाथ से छुड़ाया और वापस घर के अंदर कदम रखते हुए कहा, आस्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप घर वापस चलो, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए आस्तिक एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन अरुणिमा फिर से अपने कदम पीछे लेते हुए बिल्कुल घर के अंदर आ गई थी और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? अरुणिमा को लगा शायद आस्तिक उसकी खातिर उसकी बात समझ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। आस्तिक भी गुस्से में घर के अंदर आ जाता है और उसने चिल्लाती हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? तुमने क्या सोच लिया कि तुम चाहोगी मुझसे दूर जा सकती हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? अरुणिमा तुम मेरे साथ घर वापस चल रही हो, और कोई सवाल नहीं चाहिए मुझे। उसने अरुणिमा की बांह पकड़ ली और उसे कसके खींचने लगा, लेकिन अरुणिमा ने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और खींचा तानी में उसका पैर एक स्टॉल पर लग जाता है जिसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ था। वो स्टैचू के नीचे गिर जाता है और एक तेज आवाज के साथ जैसे घर में सब लोग उठ जाते हैं। अरुणिमा कसके चिल्लाते हुए कहती है, आस्तिक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है।
अरुणिमा किसी को जागना नहीं चाहती थी, लेकिन आस्तिक की हरकतों की वजह से वो ये भूल भी गई है कि वो इस वक्त किसी और के घर में है और रात के समय सब आराम कर रहे हैं। अरुणिमा हैरान हो गई ये सोचकर कि आस्तिक ने उसे आधे दिन में ही ढूंढ लिया। उसने सोचा कि वो कभी भी आस्तिक की पकड़ में नहीं आएगी, पर वो भूल कैसे गई कि ये आस्तिक का ही शहर है। वो यहाँ के हर एक गली से अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर वो इस शहर से बाहर नहीं निकलती है तो आस्तिक उसे कैसे भी करके ढूंढ ही लेगा। अब अरुणिमा को यहाँ आने का पछतावा हो रहा था। उसने अपनी वजह से मीरा और देव के साथ उसके पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया था।